छायावाद की भूमिका में नवा शीर्षक है पद विन्यास। शब्द समूह रूप विन्यास का मूल धन है। शब्दों की सामग्री को नाना रूपों में सजाकर कविता में रूप संबंधी भंगिमा लाई जाती है। जिन शब्दों के सहारे एक कवि एकदम सीधी साधी सपाट कविता लिखता है, उन्हीं को नवीन क्रम में सजाकर भाव कवि मार्मिक सौंदर्य पैदा कर देते हैं। द्विवेदी युग के कवियों ने जिन शब्दों के द्वारा घोर इतिवृत्तात्मक और तथ्यपरक कविताएं लिखी, प्रायः उन्हीं को लेकर छायावादी कवियों ने नया चमत्कार पैदा कर दिया। कालिमा, लालिमा, यामिनी आदि शब्द वही हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं तो उनका रूप यह होता है। उस काल पश्चिम की ओर रवि की रह गई बस लालिमा, होने लगी कुछ कुछ प्रकट सी यामिनी की कालिमा, और प्रसाद लिखते हैं तो यामिनी का रूप यह हो जाता है। मदिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास तथा कालिमा की शोभा ऐसी होती है। कालिमा घुलने लगी धुलने लगा आलोक, गुप्त जी के यहाँ यामिनी प्रकट होती है और प्रसाद के यहाँ धीर पद विन्यास करती हुई आती है। खट से प्रकट होने में नीरी गद्यात्मकता है तो पद विन्यास में भावभंगिमा है। गुप्त जी की कालिमा का यह भी यही हाल है। उनकी कालिमा भी प्रकट होती है जबकि प्रसाद की कालिमा धुलती है। यद्यपि ये दोनों क्रियाएं भिन्न हैं और एक जगह अंधकार बढ़ने का वर्णन है तथा दूसरी जगह चंद्रमा के आलोक से उसके घटने का, फिर धुलने में जो कोमलता है वह देखने योग्य है। इसी को गुप्त जी लिखते तो शायद कहते कि कालिमा हट गई और उस हटने में जो खट की आवाज़ होती है उससे श्रुतियों को ही नहीं बल्कि रुचि को भी धक्का लगता। इसका अर्थ यह नहीं है कि छायावादी कवियों ने संस्कृत के वजनी शब्दों का प्रयोग किया और द्विवेदी युग के कवियों ने हल्के शब्दों का। वास्तविकता यह है कि द्विवेदी युग के कवियों ने भी संस्कृत के बड़े बड़े तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। हरिऔध का प्रिय प्रवास अपनी तत्सम बहुलता के लिए प्रसिद्ध है। स्वयं द्विवेदी जी ने कविता में संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कम नहीं किया। जैसे कविता के प्रति उनकी प्रसिद्ध कविता का यह अंश, सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णा भरणे कहाँ गई, अलौकिक आनंद विदाधायिनी महाकविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। इस छंद में विचित्र वर्णा भरणे और जैसे शब्द नाद तो बहुत करते हैं परंतु ध्वनित कुछ भी नहीं करते। रस राशि रंजिते तथा कविंद्र कांते कविते जैसी सानुप्रसाद पदावली के बावजूद मर्म को स्पर्श करने वाला किसी तरह का संगीत इसमें नहीं मिलता। इसमें सुरम्य रूप रस राशि विचित्र वर्णा भरणे तथा अलौकिक नंदा जैसे बड़े बड़े और सौंदर्य सूचक शब्दों के होते हुए भी इसे पढ़कर आँखों के सामने कविता का न तो कोई सुरम्य रूप ही सामने आता है, न मन रस सिक्त ही होता है और न तो अलौकिक आनंद ही मिलता है। अमुक सुंदर है कह देने से मन उसकी सुंदरता का कायल नहीं हो जाता। स्वशब्द वाच्यत्व से काव्य सौंदर्य नहीं बढ़ता। तात्पर्य यह है कि संस्कृत के गुंजायमान शब्दों का प्रयोग करके भी द्विवेदी युग के कवि भाषा में वह मोहकता न ला सके जो छायावाद के कवियों ने ला दी। उदाहरण के लिए पंत की प्रथम रश्मि से यह एक शब्द चित्र लीजिए, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि जगी सुरभि डोले मधुबाल स्पंदन कंपन और नवजीवन सिखा जगने अपनाना। पलक सुवर्ण सुरभि स्पंदन जैसे तीन तीन वर्णों के छोटे छोटे शब्दों से पंत ने जो मोहक और सजीव वातावरण पैदा कर दिया है वो भारी भरकम शब्दों के द्वारा भी द्विवेदी युगीन कवि न कर सके। संस्कृत के बड़े बड़े तथा श्लिष्ट अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से साकेत कामायनी से कहीं अधिक समृद्ध है। कामायनी पढ़ते समय दो तीन बार से अधिक शायद ही शब्दकोश उठाना पड़े, किंतु साकेत पढ़ने के लिए तो शब्दकोश को एकदम साथ ही लेकर बैठना पड़ेगा। और कहा नहीं जा सकता कि एक ही पृष्ठ पर कितनी बार शब्दकोश खोलने की नौबत आ जाएगी। इतना होते हुए भी भाव और भाषा की दृष्टि से साकेत तथा कामायनी में कौन अधिक समृद्ध है, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं। भाषा शब्दों की संख्या से धनी नहीं होती, धनी होती है उनकी भाव व्यंजकता से। द्विवेदी युग की कविता की तुलना में छायावाद की समृद्धि का रहस्य यही है। पुनरुत्थान भावना के प्रभाव से संस्कृत के तत्सम शब्दों का पुनरुत्थान 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही हो गया था, और यह पुनरुत्थान हिंदी के अतिरिक्त बंगला, मराठी, गुजराती आदि सभी भारतीय भाषाओं में हुआ। फलतः खड़ी बोली की कविता में मध्ययुगीन काव्य भाषा में अवधिक काव्य के तद्भव शब्दों का लोप हो गया। हिंदी की अपनी परंपरा के असंख्य लोक प्रचलित तथा साहित्य ऋण शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्दों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया। इस दिशा में बंगला हिंदी की अग्रणी है। माइकल मधुसूदन दत्त और रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगला भाषा को संस्कृत के तत्सम शब्दों की सहायता से एकदम नया रूप दिया। हिंदी में इस तरह का प्रयत्न आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि ने भी किया, परंतु छायावादी कवियों ने अपने आचार्यों की अपेक्षा बंगला के महाकवियों से प्रेरणा ली। प्रसाद और निराला के शब्द समूह पर रविंद्रनाथ ठाकुर की पदरचना का प्रभाव स्पष्ट है। निराला की पहली कविता जूही की कली के पदों में बंगला कविता की पदावली की अनुगूंज सुनाई पड़ती है, विशेषतः उसके आरंभ में। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली, दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में। यहाँ विजन वन वल्लरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन अथवा चरणों में कुंज लता पुंज और उपवन पर सरसरित गहन गिरी कानन जैसे पदोच्चय रविंद्रनाथ की कविताओं के पदों की गूंज से भरे हैं। ये पद समूह एकत्र ही रविंद्रनाथ की किसी कविता में भले ही न मिले, और निराला ने जानबूझकर एक ही जगह से उन्हें भले ही न उठा लिया हो, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी पदरचना का प्रेरणा स्रोत वही है। यहाँ तक कि इनका उच्चारण भी थोड़ा सा बंगला की मुख सुख परंपरा की आकांक्षा रखता है। पंत का यह कहना एक हद तक ठीक है कि निराला के मुक्त छंदों के पद प्रवाह में बंगला के मुक्त छंदों के पाठ का आभास होता है, आभास ही होता है, वस्तुतः वह ज्यों का त्यों नहीं है। निराला के काव्य संस्कार में रविंद्रनाथ के काव्य का बहुत अधिक हाथ है, इसे स्वयं निराला ने भी कई बार स्वीकार किया है। निराला के सम्मुख रविंद्रनाथ आजीवन प्रतिद्वंदी के रूप में रहे। गुरुदेव के प्रति निराला के मन में बड़े ही स्वस्थ स्पर्धा रही है। वे रविंद्रनाथ को सामने रखकर हिंदी को समृद्ध करने का प्रयत्न करते रहे। निराला की सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति कविता को रविंद्रनाथ की शाहजहां कविता के साथ पढ़िए तो दोनों की पदावली के ध्वनि साम्य का पता चलेगा। एक ओर विक्षण अराल बज रहे जहां जीवन के स्वर भर छंद ताल मौन में मंत्र है, तो दूसरी ओर हीरा मुक्ता माणिक्यर घटा जेनो शून्य दिगंतेर इंद्रजाल इंद्रधनुष छड़ा। प्रसाद की पदावली के पीछे